ओम शांति। बाबा का यज्ञ जो इतना विस्तार को पाया है, जो आज हम इतना बड़ा विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को एक वट वृक्ष के रूप में देख रहे हैं, उसके पिल्लर्स हमारे यज्ञ के आदि रतन दादियां और हमारे मुख्य बड़े भाई, जिनकी आज अनुपम गाथा सुनाने की सेवा मुझे मिली है। 47 वर्षों तक इन दादियों के साथ, भाइयों के साथ सेवा करने का सौभाग्य मुझे आत्मा को मिला। और बचपन भी दादियों की गोद में पला। अब बचपन की कहानी से मैं शुरू करता हूं। जब मेरी लौकिक आयु केवल 4 वर्ष की थी, मुझे याद भी इतना नहीं है, तब हमारी मातेश्वरी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका, प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती माँ 35 दादियों को लेकर के हमारे एक छोटे से गांव में आई। वो गांव है उत्तर प्रदेश का, कानपुर के पास, जहां पर अभी तक भी पूरी साइंस की व्यवस्थाएं नहीं है। बिजली कभी कभी अभी आती है, लेकिन जब मातेश्वरी जी गई थी तब कोई भी साधन सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने मेरे लौकिक घर में गीता पाठशाला खोली। उसी परिवार में पलने के कारण बीच बीच में जो पहले सेंटर चलता था, वहां पर एक कोर्सियर थे नहर के, उन्होंने ही कोठी पर अपना सेंटर शुरू किया था। तो मैं माता जी के साथ भोग खाने के लिए जाता था। और हमारे संस्था का गुरुवार का भोग क्या मशहूर है? खीर। तो मैं भी कभी कभी खीर खाने के लिए लौकिक परिवार के साथ, मम्मी पापा के साथ उस स्थान पर जाता था। उसके बाद बीच बीच में दादियां जब हमारे लौकिक घर में आने लगी, तो एक दादी जो कुछ समय पहले पिछले वर्ष ही शरीर छोड़ा, बेंगलोर में कुमारा पार्क सेंटर पर सरला दादी थी। और ये सरला दादी बहुत सरल स्वभाव की और बहुत अच्छे गीत गाती थी। उस समय बाबा ने, दादियों ने इनको कानपुर में सेवा केंद्र पर रहने के लिए कहा था। और कानपुर में मेरी लौकिक बहन और सहला दादी साथ साथ रहती थी। तो जब भी सेवाएं कम होती थी तो घर में आके 15 दिन 20 दिन रहती थी। और मैं भी उस समय 7-8 साल का था, स्कूल जाता था, फिर दादी के साथ खेलता था। और दादी बहुत प्यार से अपने पास बिठा के खिलाती पिलाती। वो बचपन का दिन कभी कभी याद आता है कि दादियां कितना निर्माणता के साथ, कितनी त्याग वृत्ति से, क्योंकि हमारे घर में, गांव में आप जानते हो, लेटरिन बाथरूम भी बनने नहीं देते। अभी तो सब जगह बन गए हैं। उस समय पिताजी जब बनाने लगे तो गांव वालों ने बड़ा विरोध किया कि ऐसा थोड़ी होता है, घर के अंदर कहीं लेटरिन होती है क्या। तो ये सब हमारी दादियां भी, दादी बाहर जाती थी जंगलों में सुबह सुबह उठ करके, कोई साधन कोई सुविधाएं गांव में नहीं। और ऐसे त्याग मूर्ति, तपस्या मूर्ति दादियों ने कैसे हम सबकी पालना की, कैसे यज्ञ की स्थापना की, वंडरफुल इनका त्याग था। कहां तो बाबा ने इतना प्यार से पालना की होगी दादियों की। कहते थे ओम मंडली में तो पिस्ता बादाम खाते हैं। तो 14 साल तक जब तक एक संस्था कराची में हैदराबाद में रही तब तक तो बहुत आराम से बाबा की लौकिक संपत्ति से इतनी सब बहनों की भाइयों की पालना हुई। और उसके बाद 1950 में संस्था भारत आई, मई 1950 में आई और 1.5 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े पेपर आए। उसका कहानी अगर सुनाऊंगा तो उसका बहुत बड़ा विस्तार है, शायद सुना होगा पुराणों ने। हमारी मनोहर इंदिरा दादी बहुत प्यार से यज्ञ की कहानी सुनाती थी। बाबा जब यहाँ आए आबू में सब बहनों को लेकर तो 1.5 साल के अंदर फुल बेगरी पार्ट हो गया, जो कुछ लाए थे खा पी के पूरा कर दिया, सेवाएं कुछ नहीं थी। तो बाबा ने इनमें फोर्स भरा कि तुम बच्चों के पास तो इतना बड़ा अविनाशी धन है, इस धन को बांटो, वो धन तो इसके पीछे अपने आप आता है। तो इन बहनों ने हिम्मत की और 52 में सेवाओं का प्रारंभ किया इलाहाबाद से, कुंभ से। चित्र उठाए और चित्र लेकर के वहां जब जाती थी तो भाई बहने दादियों को देखती थी, छोटी छोटी उम्र में इतना चेहरे पर रौनक, इतनी प्योरिटी की झलक, जैसे साक्षात देवी कोई उतरी हो 14 साल तपस्या करने के बाद। तो दादियों को देख करके ही सेंटर खुलने लगे, इलाहाबाद से ही सेवाएं प्रारंभ हुई और फिर उसके बाद दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ सेवा केंद्र खुले। लेकिन दादियों का जो त्याग था, तपस्या थी, सेवा भावना थी, और विशेष करके 3 बातों से मैंने बहुत नजदीक से देखा दादियों का प्यार रहा। मैं नाम सहित बताऊंगा कैसे किसने उस प्यार को प्रकट किया। एक तो मधुबन घर से बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। दूसरा बाबा से जिगरी प्यार था और तीसरा बाबा की पढ़ाई से। हर एक के अंदर मैंने देखा, एक दिन भी बाबा के अव्यक्त होने के बाद किसी ने भी रिवाइज कोर्स की मुरली को भी मिस नहीं किया होगा। और ड्रामानुसार ये सेवा मुझे बाबा के घर में मिली। सिर्फ मुरली की सेवा नहीं मिली, लेकिन मुरली के साथ साथ कुछ स्थूल सेवाएं भी थीं। और जो दादियों की आपस में मीटिंग्स होती थी, क्लासेज होती थी, उनको नोट करने की भी सेवा मिली कि तुम भले बैठो दादियों के बीच में आके किनारे बैठ जाओ और जो भी हमारी वर्कशॉप चलती है, क्लास होती है, सब नोट करो और नोट करके टाइप करके सार रूप में लिख करके देना। तो मेरी रोज की सेवा थी। और दादियों के साथ कर्मणा सेवा में भी मैं सदा हाँ जी करता था, इसलिए सब प्रकार की स्थूल सेवाएं में भी साथ दिया, मदद की। तो दादियों का बहुत प्यार, दुलार, पालना मिली। एक दादी से मैं शुरू करता हूँ, शायद किसी ने उनका नाम सुना हो, पुराने अगर कोई होंगे। उनका नाम था जवाहर दादी। और जवाहर दादी को मैं किस लिए याद किया आज, जवाहर दादी पांडव भवन में कुछ समय के लिए आई थी और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के किसी सेवा केंद्र पर वो इंचार्ज थे, वहां सेवाएं शुरू की थी। तो एक बार दादियां उस समय जब बेगरी पार्ट से मधुबन से गई तो उनको कुछ भी मिलता था खाने के लिए, पहनने के लिए, तो वो खुद के लिए नहीं करती थी, उठा करके यज्ञ में भेज देती, मधुबन में बाबा के पास भेज दो, वहां बहुत बच्चे हैं, वो खाएंगे। तो उस दादी ने बड़ा एक खेल किया, उसके पास इतना बड़ा कोई तरबूजा देके गया। तो तरबूजा मैं इतना बड़ा क्या करूंगी, कैसे खाऊंगी, ये मैं बाबा के घर में भेज दूं तो वहां सब खाएंगे बाबा के साथ। कैसे भेजना उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको कुछ पता नहीं था। उसने अपनी चाकू से उस पर लिखा ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू राजस्थान, तरबूजे पर लिख दिया और लिख करके एक भाई को बोला जो ट्रेन आबू की तरफ जा रही हो उसमें रख के आ जाओ। अब आबू की ट्रेन वहां से आई, कितनी ट्रेन बदलते हुए वो कुछ दिन के बाद लुढ़कते हुए मधुबन में पहुंच गया। तो बाबा के पास आया, बाबा ने देखा कि ये तरबूजा और इस पर ऐसा लिखा है, कोई एड्रेस और नहीं है, कोई टिकट नहीं है, कहाँ से आया होगा। बाबा तो जाने जाननहार थे। बाबा कहते हाँ बच्ची, उसी बेटी ने भेजा होगा, वही ऐसी है, भोली सच्ची बच्ची। तो ऐसी सच्ची बच्ची थी जो उसने इसी तरह का तरबूजा घर में भेजा और सब ने उसको प्यार से खाया। जब वो मधुबन में आई, जब यहाँ रह रही थी, तो मेरी सेवा थी सबको कमरा देने की और सबके बिस्तर पहुँचाने की। और बिस्तर उस समय होते थे बड़े बड़े होल डाल, और सबको लाना होता था। अभी तो मधुबन में सब साधन मिल जाते, उस समय तो कोई मधुबन में आता था तो अपनी बाल्टी मग अपना बिस्तरा अपना सब कुछ साधन लेके आता था, और वो उठा करके उनके कमरों में ले जाना। फिर जब वो जा रहे हैं तो उनके साथ में फिर गाड़ी तक छोड़ने आना। ये सेवा मेरी थी। सेवाएं तो सब प्रकार की थी, लेकिन ये खास सेवा इसलिए सुना रहा हूं कि जब जवाहर दादी को हम लोगों ने जाने का दिन आया और विदाई लेने के लिए उनको क्लास में छुट्टी लेने जाना होता, छोटा हाल था, दीदी उनको गद्दी पर बिठा के उनका अनुभव सुनने लगी कि मधुबन में आई हो, क्या भरा है, क्या पाया है, सुनाओ। तो सब उनका बिस्तर लपेट करके बांध करके हमने तैयार किया, और तैयार करके दादी को बोला, दादी आप छुट्टी लेकर के आ जाओ क्लास से। तो क्लास में छुट्टी लिया, और छुट्टी लेने के बाद आई, कहती भाई मेरे को 2 मिनट स्नान करना है, आप 2 मिनट ठहर जाओ। ना ठीक है, वो गई कमरे के अंदर, और कमरे में जाके उसको पेट में कुछ दर्द पड़ा क्या हुआ, और बिस्तर पर लेट गई। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा, ट्रेन का टाइम, गाड़ी छूटने, क्या हुआ भाई। हम लोगों ने फिर जाके देखा तो दादी तो बाबा के पास चली गई थी नहीं। ऐसे सब बिस्तर समेटा हुआ, सबसे छुट्टी ले लिया, सब तैयारी कर ली, और बाबा की गोदी में उड़ के चले गए। ऐसे ऐसे दादियों के जब मैं देखता हूँ कि इतना बाबा से प्यार है, इतना बाबा के घर में ही मुझे जाना है, 1 सेकंड में ऐसे क्या होगा, चली गई। तो वो जवाहर दादी थी जो इतना बाबा से सच्चाई का प्यार था, और यज्ञ के अंदर ऐसे जो बाबा के बच्चे थे वो बड़े निश्चय बुद्धि, बहुत भावना वाले, बाबा से, मधुबन से, पढ़ाई से बहुत प्यार। अब दूसरी दादी की कहानी सुनाता हूँ, आपने शायद सुना होगा, संतरी दादी का नाम। किसने किसने सुना है? अच्छा, सबने सुना है, कभी काफी हैं। संतरी दादी बाबा की फेवरेट संदेशी थी, और कलकत्ता में पर दादी के साथ रहती थी। पर दादी जानते हो ना, निर्मल शांता दादी, बाबा की जो लौकिक पुत्री निर्मल शांता दादी थी, दादी के साथ ही संतरी दादी रहती थी, और संतरी दादी भी लौकिक में बाबा की बहू लगती थी। चचेरे भाई का जो बेटा था विश्वकिशोर दादा, बाबा का बहुत राइट हैंड था, और उनकी युगल थी संतरी दादी। और संतरी दादी बिल्कुल भोली सच्ची ईमानदार, बाबा की एकदम, कहता था बाबा सचली कौड़ी जैसे, बिल्कुल सच्ची। जब बाबा कह दे वो ट्रांस में जाती और बिल्कुल एक्यूरेट संदेश लेके आती थी, और मैं समझता हूँ रोज सवेरे सवेरे बाबा के पास जाती थी, अमृत वेले 2 बजे सोए सोए बाबा के पास चली जाती, कोई भी संदेश लाना होता ले आती। तो एक दिन इंद्रप्रस्थ में वो रहती थी, उस समय इंद्रप्रस्थ बन गया था, तो शाम के समय मेरे को बुलाया कमरे में और कहती है भैया मेरे को सुबह जाना है, तुम्हारे पास जो माल खजाना है वो ले आओ। ये दादियां माल खजाना कहती थी क्लासेज मुरली को। तो मेरे कहती है तुम्हारे पास जो माल खजाना है सब ले आओ, जो तुमने टाइप किया है, जो मुरलियां हैं मेरे को चाहिए अभी। दादी आप सवेरे जाएंगी? मैं सवेरे दे जाऊंगा आके। नहीं नहीं, हमारी पैकिंग हो रही है सब सामान, तुम अभी जाओ कमरे में ऑफिस में और अभी ले आओ। रात के 8:30-9 बजे की बात है। तो मैं गया कमरे में, जो मेरे पास मुरलियां थी, क्लासेज थी, टाइप किया हुआ एक लिफाफा बनाया और लिफाफा बना के दादी को हाथ में दिया। हमने कहा दादी आप सवेरे जाओगी, सवेरे मिलेंगे या नहीं, अभी से गुड नाइट, और ऐसे याद प्यार देके और मिलके मैं टोली ओली खा के दादी से, दादी तो बचपन से बहुत प्यार करती थी। चला गया मैं कमरे में और सुबह सुबह समाचार मिलता है, सुबह 5 बजे 4:45 बजे योग के बाद, कि संतरी दादी ने 2 बजे शरीर छोड़ दिया। बिस्तर पर लेटी है, जो उनके साथ बहन थी उसको भी पता नहीं चला कि ये दादी सोई हुई आज क्यों इतना देर तक सोई है। शायद या ट्रांस में चली गई होगी, क्यों बीच बीच में अमृत वेले जाती थी बाबा के पास, तो देखा है तो उठ ही नहीं रही है, तो हिलाया तो देखा यहां तो है ही नहीं, तो चली गई उतन में। तो ऐसी दादियों का एकदम लास्ट तक भी पढ़ाई से बहुत प्यार रहा, मधुबन से बहुत प्यार रहा। तो संतरी दादी की एक कहानी और सुनाता हूं। जब मैं पहली बार आया 71 में, तो एक मास मैं मधुबन में रहा, पहले सेवाएं की। तो संतरी दादी उस समय मधुबन का स्टोर जो है कपड़े का, सामान का, वो संभालती थी। हम लोग जो आते थे सौगात देना, कोई भी कपड़े वगैरह चाहिए, कोई को भी कुछ चाहिए, यज्ञ का पूरा स्टॉक उनके हाथ में ही था। तो एक दिन मेरे को बुलाया और कहने लगी, जब मेरे जाने के, वापस जाने के दिन थे नजदीक, कि तुम अपनी अटैची मेरे पास ले आओ। और उस समय अटैची तो ये गत्ते वाली नहीं होती थी, वो लोहे का टैंक होता था, लोहे के छोटे छोटे टैंक होते थे। तो लोहे की पेटी थी मेरे पास, तो मैंने कहा पता नहीं मेरी पेटी क्यों चेक करेंगी, क्या है, ऐसा तो नहीं कोई ने कुछ चोरी किया हो तो पेटी सबकी चेक कर रहे होंगे। तो बड़े डरते डरते मैं गया कमरे में, अपनी पेटी लेके आया। पेटी में तो मेरे पास कुछ था ही नहीं ज्यादा, एक दो ड्रेस जो मधुबन के लिए बनाई थी, कुछ कपड़े होंगे, कुछ था सामान थोड़ा बहुत। लाया, दादी ने कहा यहाँ रख दो कमरे में, मेरे रख के जाओ। मैं कमरे में रख के आया। तो दूसरे दिन जब गया तो मैंने देखा वो पेटी फुल भरी हुई कपड़ों से। कहती अभी ले जाओ इसको। मैंने कहा दादी इसमें क्या डाला है आपने? कहती है दीदी ने मुझे कहा है, दीदी मनमोहनी, कि ये भाई जो है ये जा रहा है गांव में और इसको अच्छी तरह से फुल ड्रेसेस, और उस समय हांगकांग के पैंट सूट आते थे मधुबन में और वही हम सबको मधुबन वालों को मिलते थे पहनने के लिए। तो पैंट सूट थी 8-10 जोड़ी पैंट सूट हमारी अटैची के अंदर सजी हुई, पूरी भरी हुई अटैची। मैं दादी मैं क्या करूंगा और किस लिए आप इतना दे रही हैं मुझे? तो दादी कहती है बड़े प्यार से, कहती है देखो दीदी, कहती है ये बालक जो है यहाँ रह सकता है और यहाँ रहने के लिए तुमको लौकिक घर से छुट्टी चाहिए, और लौकिक घर में तुम इकलौते बेटे हो, क्योंकि मेरे पिताजी 3 भाई और उन 3 भाइयों के बीच में मैं अकेला बेटा। तो ये बात जब दीदी ने संतरी दादी को कही कि इसको यहाँ पर रख सकते हैं, तो संतरी दादी ने बड़ी युक्ति से पेटी मेरी तैयार कर दी। तो मैंने मना किया, दादी मैं ये क्यों ले जाऊं? कहती है रोज कोई एक ड्रेस नई पहन के घूमना तो तुम्हारे लौकिक वाले तुम्हारे पर बंधन नहीं डालेंगे, समझेंगे संस्था गरीब नहीं है। एक महीने में जाके इतना लेके आया, इतनी सौगातें लेके आया, इतनी ड्रेसेज लेके आया, एक महीने के लिए आया था, तो तुमको छुट्टी सहज मिल जाएगी। क्योंकि दादी ने मेरे को एक दिन पहले हमारे इंटरव्यू में पूछा, वो जो पांडव भवन में बगीचे में बाबा का झूला पड़ा है, उस झूले पर एक तरफ मुझे बिठाया, और मैं तो डरता था क्योंकि मेरी उम्र केवल उस समय 15 साल थी। तो मैं दादी को बोला, दादी अगर दीदी चाहती है तो मैं रह सकता हूँ मधुबन में। तो मेरे से पूछने लगी तुम्हारे लौकिक में कौन कौन है? तो जब मैंने बताया कि एक बहन है वो तो सेंटर पर है, पहले ही आ गई है, और हम अपने पिताजी के 3 भाइयों की दुकानें हैं, खेती है, घर हैं, और मैं इकलौता बेटा हूँ और मैं 9th में पढ़ता हूँ, दादी ऐसे देखती मेरे को नीचे से ऊपर तक, कहती तेरे को तो छुट्टी मिलना मुश्किल है, और अगर छुट्टी मिले तो तुम 18 साल का जब होना ना, 3 साल और पढ़ लो, उसके बाद आ जाना। तो मेरे मुंह से ऐसे अचानक निकला, दादी अभी तो विनाश होने वाला है, बाबा कहता है विनाश होने वाला है, तो मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो दादी हंसने लगी, कहती अच्छा ठीक है विनाश तो होगा, लेकिन अगर मान लो तुम्हारी बहुत दिल है तो तुम अपने पिताजी की चिट्ठी लेकर के हाई स्कूल करके आ जाना। इतनी छुट्टी दे दिया। तो जब मैं गया तो उस समय 71 में लास्ट में ये बांग्लादेश वाला युद्ध पाकिस्तान हिंदुस्तान का हुआ, और उस समय तो आप सब जानते जो होंगे उस समय कि शाम के समय सायरन बजता था और ब्लैकआउट हो जाता था। जहां मैं पढ़ता था वहां इतना भय था, पता नहीं कहां पर कोई बम गिराएगा, कभी क्या होगा। तो मुझे तो पक्का हो गया कि विनाशुर हो गया, अभी अब मुझे यहां नहीं रहना है। मैंने पिताजी को बोला कैसे करके मेरे को चिट्ठी दे दो, तो बहुत पक्के थे, निश्चय बुद्धि थे। तो बस मेरा लास्ट दिन पेपर जो हुआ हाई स्कूल का, मैंने उसी दिन ही लास्ट दिन पेपर दिया और वहीं से ट्रेन पकड़ी और सीधा मधुबन आ गया चिट्ठी लेके। जब मधुबन में आया तो दादी गेट पर ही घूम रही थी, दादी प्रकाशमणि, बहुत एक्टिव थी वो, तो पूरा प्रशासन उनके हाथ में था। तो दादी मिल गई, कहती तुम कैसे आया, तुमको छुट्टी मिली है। हमने कहा हाँ दादी मैं लेके आया हूँ। तो जब चिट्ठी वहीं पर मंगा ली, खड़े खड़े पढ़ने लगी गेट पर ही, तो उसमें पिताजी ने बड़े अच्छे शब्द लिखे थे कि इस धरा पर स्वयं भगवान नई सृष्टि बनाने के लिए आया है, और हमारे बच्चों को अगर उसमें सहयोग देने का भाग्य मिल जाए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। और दादी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इनको तो सरेंडर करने के लिए आप छुट्टी देंगी, लेकिन हो सके तो मुझे भी चांस दे देना। तो ये जब दादी ने पत्र पढ़ा तो उनको तो ऐसे लगा कि ये तो बड़े निश्चय बुद्धि परिवार है, बहुत पक्के हैं, तो अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। एक माता जी यहाँ थी हमारे मधुबन में सेवा पर, आवास निवास विभाग वो संभालती थी, यही बिस्तर वाला डिपार्टमेंट, तुम इनके साथ सेवा करो। यहाँ मधुबन में एक भाई है अभी साबुन फैक्ट्री देखते हैं, पाठक भाई, वो पाठक भाई वहां सेवा करते थे और मुझे उनके साथ सेवा में भेज दिया। और उसके बाद तो सब कर्मणा सेवाएं यज्ञ के अंदर, धोबी घाट करना, सुबह पानी गर्म करना, रोटियां बनाना चूल्हे में, उस समय तो साधन नहीं थे साइंस के, सब मैनुअल ऐसे चलता था। और जितने लोग आते थे उनको सवेरे सवेरे 4 बजे से गर्म पानी की बाल्टियां एक जगह गर्म करना, सबके कमरों में पहुंचाना। और मैं तो छोटा था, ये सब खेल खेल में करता था, सब भाइयों के साथ मिल करके पानी पहुंचाते थे, फिर रोटी बनाने जाने जाते थे, फिर धोबी घाट करते थे, फिर कमरों की सफाई करते थे। तो ये खेल खेल में सेवाएं करते थे और दादियां बहुत प्यार करती थी। इन पूर्वजों की एक विशेषता ये थी कि अगर कोई ने सेवा की है तो उसकी दिल भर के खातरी करती थी। मान लो मैंने धोबी घाट किया और अगर छटका लगाया कपड़ों को तो हमको डबल हलवा मिलता था गरम गरम। जो दूसरे करने वाले थे, सुखाने वाले, नील लगाने वाले, पानी से निकालने वाले, उनको सिंगल, लेकिन धोबी घाट में सटका मारा है इसलिए डबल। और फिर इसके बाद अगर कोई ने कमरों में बाल्टी पहुंचाई पानी की तो इतनी बढ़िया टोलियां मिलेंगी, फिर कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगी, कभी कोई ड्रेस मिल जाएगी, कभी कोई गिफ्ट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से पालना देने का जो संस्कार था ना, उससे पूरा यज्ञ बंधा हुआ था, और सेवा के लिए कोई ना नहीं कर सकता था। जो कोई ने कुछ काम किया थोड़ा बहुत, दादियों ने दिल भर के उनकी पालना की। और फिर धीरे से कोई शिक्षा देनी हो तो बहुत युक्ति से देते थे, और दीदी की शिक्षाएं जो ऐसी थी, दीदी नियम और मर्यादाओं में, दीदी मनमोहिनी, सुना होगा, दीदी मनमोहिनी को बाबा ने 65 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा की सीट पर, मम्मा की चारपाई पर दीदी को रखा। दीदी पहले दिल्ली जोन की इंचार्ज थी, वहां सेवा करते थे, तो दिल्ली जोन से मंगा करके दीदी को बाबा ने अपने साथ रखा 65 में। और दीदी नियम मर्यादाओं में, लॉ एंड लॉ का बहुत पक्का बैलेंस था। तो जब ये 72 शुरू हुआ और मैं मधुबन में आ गया तो एक दिन अचानक दीदी और दादी दोनों की कुछ तबीयत बिगड़ी और इलाज के लिए दोनों बॉम्बे चली गई। तो बॉम्बे जब गई तो सब मधुबन वालों का तो बाबा के बाद इनसे बहुत प्यार था, और तो कोई था ही नहीं, यही हमारे माता पिता थे। तो दीदी दादी ने ऊपर बॉम्बे से क्या मैसेज दिया कि जो भी मधुबन निवासी हैं सब बॉम्बे आएं, बीच बीच में चक्कर लगा के जाएं, दादियों से मिल के जाएं और बॉम्बे घूम के जाएं। तो बॉम्बे घूमने की छुट्टी सबको तो मिल गई, लेकिन जो भाई टाइप करता था उसको नहीं मिली, क्योंकि मुरली टाइप करना अगर बंद कर देगा तो मुरली टाइप नहीं हुई तो ब्राह्मणों की कंप्लेन आएगी कि आज मुरली नहीं आई, आज क्या हो गया। तो वो बेचारा ऐसे बैठा था उदास, तो मैं साथ में बैठा था, मैं क्या हुआ, कहता सबको बॉम्बे जाने की छुट्टी मिली है, मुझे नहीं मिल रही है, तुम मेरे साथ टाइप सीख सकते हो क्या। तो मैंने कहा मुझे टाइप सिखा दो तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो टाइप सिखाने की बात जब बात आई तो कहा मैं पूछता हूं, तो उसने ठंकार लगाया और पूछा कि दादी एक यूपी का भाई है, हिंदी बहुत अच्छी है, अगर आप छुट्टी दो तो मैं इसको टाइप सिखाऊं, क्योंकि मेरे बॉम्बे आने की छुट्टी नहीं मिल रही। तो दीदी ने दादी तो दीदी के बिना कुछ करती नहीं थी, तो बहुत बड़ी जोड़ी थी, सुना होगा शरीर दो आत्मा एक, मानो दादी को अगर कोई बात कहते हैं तो दीदी दीदी को कहते हैं, दादी एक दूसरे से बिना राय लिए कोई छुट्टी नहीं देते। तो दादी ने दीदी को बताया कि ऐसे ऐसे भाई है और टाइप सीखना चाहता है और भाई सिखाना चाहता है, आपकी क्या राय है। तो दीदी कहती है उसको सिंधी सीखनी पड़ेगी, बिना सिंधी सीखे वो टाइप क्या करेगा, पहले उसको पूछो सिंधी सीखेगा। तो मेरे को जब मैसेज मिला तो वहां हमारे साथ मधुबन में तीन दादाएं थे, सुना होगा आपने, दादा विश्वरतन, दादा आनंद किशोर और दादा चंद्रास, तो सब एडवांस पार्टी में चले गए। एक चौथा दादा भी था अर्जुन दादा, वो हमारे साथ हंसने बहलने वाला, वो अलग था। लेकिन ये तीन दादाओं की बहुत बड़ी यज्ञ के अंदर जवाबदारियां थी। दादा विश्वरतन के अंदर जो एक्यूरेसी और जो बाबा के यज्ञ की प्रति वफादारी ईमानदारी, उसके कारण सारा अकाउंट दादा देखता था और सब स्थूल सेवाएं कर्मणा सेवाओं की जवाबदारी उनके ऊपर थी, चाहे रोटी बनाने की, चाहे धोबी घाट की, चाहे सफाई की, जो हम सेवाधारी जाते थे दादा के साथ ही हम सेवा करते थे। तो दादा ने कहा सिंधी सीखने की बात दीदी कर रही है, मैं तुमको सिखा दूंगा। दादा की राइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत मोती जैसे अक्षर थे, एक्यूरेट लिखते थे। तो दादा ने कहा तुम सवेरे योग के बाद मेरे पास आधा घंटा रोज आओ, मैं तुमको एक हफ्ते में बिल्कुल सिंधी सिखा दूंगा। तो मैं सवेरे सवेरे जाता था, दादा मुझे का खागा, वही हिंदी, माना सिंधी लैंग्वेज नहीं सीखी, लिपि सीखी, लिपि जो राइटिंग होती है जो दादियां पढ़ती हैं, जो आज भी मुरली जो पढ़ती ना, दादी रतन मोहिनी दान की दादी, वो है हिंदी ही लेकिन लिखत सिंधी है, उर्दू जैसा। तो दादा ने मुझे सचमुच एक हफ्ते में सिंधी पढ़ना और लिखना सब सिखा दिया, स्टूडेंट तो था ही पढ़ता था, और फिर मैंने टाइप सीख लिया। तो जब दीदी दादी वापस आई तो बोला तुम टाइप और सिंधी सीख गए, हमने कहा हाँ दादी मैंने सीख लिया। और दीदी क्लास नहीं, स्कूल नहीं पढ़ी थी, लेकिन दीदी जो क्वेश्चन आंसर निकालती थी वो बड़े वंडरफुल, और उनकी अपनी शॉर्ट हैंड थी, जैसे लक्ष्मी नारायण लिखना है तो एल और एन लिख दिया, ड्रामा लिखना है तो डी लिख दिया। तो उनकी शॉर्ट हैंड जब मेरे हाथ में दिया, उन्होंने कहा पढ़ो, तो मैं एक लाइन भी नहीं पढ़ पाया, कुछ नहीं पढ़ने में आया। हमने कहा दीदी ये किसने लिखा, ये तो सिंधी नहीं है। बोली क्या है, मैं तो सिंधी में लिखा है। लेकिन दीदी बहुत रमणीक थी, कहती है मैं जानती हूं मैं भी कभी कभी नहीं पढ़ पाती हूं। तो एक दूसरी दादी थी, अभी शरीर छोड़ा पिछले 2-3-4 महीना पहले, हमारी कमलमणि दादी, और कमलमणि दादी अभी कृष्णानगर में रहती थी दिल्ली में लास्ट में, लेकिन वो मधुबन में सब प्रकार के नोट्स लेती थी और दीदी की राइटिंग सब पढ़ना जानते थे। तो दीदी ने कहा कि कमलमणि को पकड़ो, उसको अपने साथ ले जाओ कमरे में ऑफिस में, और उसको बोलो तुम मेरे को पढ़ के सुनाओ। तो दादी कमलमणि मुझे ऑफिस में मैं ले आता था, बहुत सीधी सादी दादियां, बहुत सरल नेचर वाली, कोई ऐसे नहीं मैं क्यों तुम्हारे पास चलूं, मैं क्यों बैठूं, नहीं, जो कहा वो मानी। तो आई दादी, आती थी रोज, और फिर मैं कहता आप दादी पढ़ो, मैं टाइप कर लेता हूँ। ऐसे पढ़ते पढ़ते दादी के साथ बैठ करके मैंने सब कुछ सीख लिया, पढ़ना, दीदी की राइटिंग, क्वेश्चन आंसर निकालना, बनाना। तो दीदी ने ऐसे मेरी पालना की। दीदी की तीन शिक्षाएं मैं सुनाता हूँ, क्योंकि शिक्षाएं तो इनको जानना, क्या क्यों इतना बड़ा यज्ञ इतना प्रसिद्ध हुआ और इतना निर्विघ्न चला, उसकी तीन मुख्य धारणाएं आप बताता हूं मैं आपको। जब मैं पहली बार दीदी से मिला, तो दीदी जब सरेंडर हुआ, मधुबन में रहने लगा, तो मेरे कहती है तुम यहां आए हो, एक बात का ध्यान रखना। जरूर दीदी, आप जो कहेंगे। संग का ध्यान रखना। मेरे अंदर क्वेश्चन उठ गया, मैं कलयुग का संग, लड़कों का संग, स्कूल का संग तो छोड़ के आया, अब मधुबन में भी, मधुबन में आने के बाद संग का ध्यान रखना, ये क्या शिक्षा मिली? हमने कहा दीदी किसका संग? मधुबन वालों का। तो हंसने लगी, कहती है भाई यहां भी दो प्रकार के बच्चे हैं, एक तो हैं जो बाबा के प्रति बहुत समर्पित भाव से आए हैं, जिनका पढ़ाई पर, योग पर ध्यान है, और एक हैं जो सिर्फ खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, लेते हैं और सेवा करते हैं, वो हैं सफेद ड्रेस वाले नौकर। सफेद ड्रेस लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, समर्पित भी हैं, लेकिन अगर उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, अगर वो अमृत वेला योग नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं, उठना नहीं, बात नहीं करना। और अगर कोई भी यज्ञ के विषय में, दादियों के विषय में, मुरली के विषय में व्यर्थ चिंतन, परचिंतन करे, तो उसके संग से बच के रहना। ये पहली शिक्षा मिली। आप सब ध्यान देना इस बात को। अगर आपके क्लास के अंदर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेवा बहुत कर रहे हैं, हर प्रकार का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी की कमी निकालते हैं, कभी न कभी मुरली पर ध्यान नहीं देते हैं, अमृत वेला नहीं करते हैं, सिर्फ सेवा करते हैं, तो बाबा हमारी दीदियों ने यह सिखाया, उस संग में कभी नहीं जाना, नहीं तो आपकी उन्नति नहीं होगी। एक शिक्षा मिली। दूसरी बार एक दिन ऐसे ही बैठा योग कर रहा था, क्योंकि दीदी अमृत वेला खुद योग कराती थी, किसी को नहीं कहती थी, कहती मैं कराऊंगी। तो दीदी 4 बजे तैयार होकर सबसे पहले बैठ जाती थी योग में, और कौन कैसे योग कर रहा है सबके ऊपर नजर रहती थी, कब कौन उठ गया और कौन नहीं आया, सबके ऊपर नजर थी। तो एक दिन की रमणीक बात सुनाता हूँ, क्योंकि दीदी दादी ने हम लोगों के जो योग को पक्का किया, अमृत वेला और मुरली क्लास पक्का किया, उसके पीछे दीदी की बड़ी मेहनत थी। एक दिन दादी को कहती है, दादी क्लास की हाजिरी कम है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है, जितने हैं मधुबन में उतने यहाँ आगे नहीं बैठते, कहाँ रहते हैं आप, अमृत वेले योग के समय उठ के जाओ और चेक करो कहाँ पर कौन सोया है और कौन क्या कर रहा है। तो एक दिन हमारी दादी प्रकाशमणि और दादी के साथ मोहिनी बहन थी, तो दादी और मोहिनी बहन दोनों ही सुबह 4:30 बजे उठी योग से, हाल से, छोटे हाल ही था, स्टे हाल, वहां से निकली और सीधा ही हमारे कमरे जहाँ थे लाइट हाउस, उसमें 5 कमरे थे और हम वहां 25 भाई रहते थे, एक कमरे में 5-5। तो सीढ़ी पर चढ़ने लगी तो हम लोग भी थोड़ा 10-15 मिनट पहले योग से उठ के गए थे, तो ब्रश कर रहे थे, बाहर खड़े थे। तो दादी और मोहिनी बहन ने क्या किया, अपनी साड़ी का पल्लू का घूंघट बनाया और घूंघट निकाल के ऐसे, और दोनों सीढ़ी चढ़ रही थी। तो हम लोग जोर से वहां से ऊपर से चिल्लाए, अरे माताएं तुम भाइयों की तरफ क्यों आ रही हो, ये भाइयों के कमरे हैं। तो दादी ने ऐसे देख के ऐसे आंख दिखाई, चुप, बोला नहीं। ऐसे बोला तो हम समझ गए आज दादी और इतनी सवेरे सवेरे 4:30 बजे क्या चेकिंग होगी पता नहीं। आई, कहती आओ मेरे साथ, कौन कौन सोया है नोट करो, नाम लिखो, उठाना नहीं किसी को, जगाना नहीं किसी को। और फिर 5 कमरों में चक्कर लगाया, देखा कौन कहाँ सोया हुआ है, कौन क्या कर रहा है, वो सबके नाम नोट किए और चली गई चुपचाप। एक सीढ़ी से आई, दूसरी सीढ़ी से उतर गई। उतरने के बाद वो लिस्ट दीदी को दे दिया, क्योंकि दीदी से सब डरते बहुत थे, नियम मर्यादाओं में दीदी बहुत सीधी सीधी शिक्षा देती थी, कोई से डरती नहीं थी, लॉ ला फुल बैलेंस वाली। तो दीदी के हाथ में लिस्ट गई, जब नाश्ता वगैरह पूरा हो गया तो दीदी के पास घंटी रहती थी, और घंटी बजाते ही पहरे वाला आता था, पहरे वाले को बोलती थी फलाने भाई को बुला लो, फलाने को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, जैसे हाजिरी होती ना ऐसे ही बस शुरू हो गई। अब जिसके पास वो पहरे वाला पहुंचे, बुलाए, दीदी बुला रही है, उसका हाल खराब, उसको पता चल गया था चेकिंग हुई है। फिर दीदी के पास, दीदी बहुत प्यार से, अच्छा आओ बैठो बैठो, अपने बाजू में बिठा लेती, फिर पूछती है आज तुमने नकीले का सैर किया? हाँ दीदी किया। नाश्ता किया? हाँ दीदी किया। तबीयत ठीक है? हाँ दीदी ठीक है। अच्छा तबीयत ठीक है, नाश्ता किया, नक्की लेक की सैर भी किया, सब कुछ किया, अमृत वेला क्यों नहीं किया? और अमृत वेला नहीं किया तो ब्राह्मण क्यों कहलाते हो? समर्पित बच्चे और अमृत वेला मिस करें, ठीक नहीं है, ये लक्षण ठीक नहीं है। यज्ञ में अगर रहना है, सेवा करनी है, पक्के बच्चे बन के रहना है, तो अमृत वेला और मुरली क्लास, यही तो दो तुम्हारे ब्राह्मण जीवन की उन्नति के साधन है। और यही तुमने मिस किया तो फिर यहां रहने का क्या फायदा है? इससे तो जाके बाहर नौकरी करो। ऐसे प्यार से समझा करके फिर कहते थे अच्छा आगे के लिए ध्यान रखना, आज अभी टोली खिलाती है दीदी, कोई बात नहीं, अभी तक जो हुआ भूल जाओ, आगे के लिए अपसेट नहीं रहना। ऐसे प्यार से टोली खिलाई और भेजा, ये दूसरी शिक्षा थी। तीसरी, एक दिन हम योग कर रहे थे, हम मुझे खुद पर्सनल बुलाया, इधर आओ, तुम योग कैसे करते हो? तो दीदी बोला जैसे सब करते हो वैसे मैं भी करता हूं। कहती वो तो ठीक है लेकिन बताओ तो कैसे करते हो? ना दीदी, मैं अपने को आत्मा समझ के बाबा को देखता हूँ, बाबा को याद करता हूँ। कहती है ये बताओ, तुम गोपी बन के याद करता है या उद्धव बन के याद करता है? अब मैं सोच में पड़ गया, हमने उद्धव की कहानी तो जानता नहीं था इतना। दीदी वो क्या होता है? बोली जो गोपियां थी ना, वो भगवान के साथ मौज करती थी, मस्ती करती थी, खुशी में रूह रियान करती थी, और उद्धव को बड़ा गुस्सा आता था। कहती थी ये गोपियों को पता नहीं किसके साथ डांस कर रही है, किसको नचा रही है, किसके साथ मटकी फोड़ रही है। उसका योग सूखा योग था उद्धव का, वो ज्ञानी था, वो समझदार था, लेकिन वो ऐसे बैठता था सीरियस, ऐसा उद्धव बन के योग नहीं करना। समझ रहे पांडव भाई लोग? अरे गोपी बन के योग करो, जो भगवान को बांध दो रस्सी में, इतना स्नेह करो, बाबा इतना प्यार दे रहा, इतनी पालना दे रहा। और दीदी का नाम लौकिक में गोपी था, लौकिक में गोपी नाम था। और दीदी जब योग में बैठती थी तो बाबा के प्यार में खो जाती थी, और अगर डांस शुरू किया तो डांस में आधा चले जाते थे, इतना साकार में बाबा से प्यार था दीदी का। तो गोपी बन के मुरली सुनो, गोपी बन के योग करो, बहुत स्नेह के अंदर करो ताकि सूखापन नहीं दिखाई दे, ठीक है? एक दिन कहती है तुम ब्रह्मा कुमार हो? कहा हाँ दीदी मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। हमने कहा पता नहीं आज क्या बोली, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कहलाना तो अच्छी बात है ना, तो हमने कहा हाँ दीदी ब्रह्मा कुमार तो हूँ। ब्रह्मा कुमार नहीं, तपस्वी कुमार बनना। ब्रह्मा कुमार आजकल सफेद ड्रेस और बैज लगा लेते, नियमों पर नहीं चलते, तपस्वी कुमार बन के दिखाना। दीदी की ये शिक्षाएं हैं, और दीदी पक्की एकदम नियम मर्यादाओं में एकदम दृढ़, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। और दीदी दादी की जोड़ी ऐसी, संस्कार एक नहीं थे, संस्कार अलग अलग दोनों के, लेकिन जो आज यज्ञ की इतनी बड़ी वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, आज किसी संस्थापक के जाने के बाद उसके टुकड़े हो जाते, लेकिन इन दादियों ने, इन बहनों ने एकता के सूत्र में अपने को बांध करके यज्ञ को हिलने नहीं दिया, कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, झुकना पड़े। ये पिल्लर्स, ये पूर्वज हैं जिनको हम याद कर रहे हैं आज। एक दिन की बात और रमणीक सुनाता हूं आपको। कुछ मारवाड़ी माताएं हमारे यज्ञ में शुरू हुई आना बिहार की तरफ से, तो मारवाड़ी माताओं के साथ सामान बहुत होता खाने पीने का, वो लेके चलती ट्रेन में, क्योंकि बाहर तो खाना नहीं है। और जब बच जाता था तो समझती थी नौकर को दे दे इधर उधर फेंकने की बजाय। तो हमारे पास कारपेंट्री डिपार्टमेंट पांडव भवन में नीचे बना था, विशाल भवन के नीचे। तो जब माताएं आई तो उन्होंने अपना बचा हुआ खाना उन भाइयों को दे दिया जाके। एक दिन दिया, भाई लोगों ने ले तो लिया लेकिन फेंक दिया कि बचा हुआ खाना मेरे क्यों देती है। दूसरे दिन दूसरी बार एक ग्रुप आया, फिर ऐसा ही किया उन्होंने, बचा हुआ खाना कारपेंटर डिपार्टमेंट में दिया है भाइयों को। अब भाइयों को थोड़ा खराब लगा, वो सब आए मिल करके दादी जी के पास, दादी आप इन माताओं को समझाओ, ये माताएं मेरे को क्या समझती हैं, अपना बचा हुआ खाना मेरे को देती हैं, हम तो समर्पित बाबा के बच्चे हैं। तो दादी को बड़ा ख्याल आया, इन माताओं को ऐसा क्यों होता है। तो बुलाया माताओं को, भाई आप लोग अपना बचा हुआ खाना इन भाइयों क्यों देती हो। बोला दादी मैं भाइयों को थोड़ी देती हूँ, मैं तो नौकरों को देती हूँ। तो दादी कहती है नौकर और भाई क्या अंतर है, इनका क्या अंतर है, तुमको क्या लगता है ये नौकर हैं या भाई हैं। बोली दादी नौकर ही तो सफेद रंगीन ड्रेस पहनते हैं, भाई लोग हमारे रंगीन ड्रेस क्यों पहनेंगे, और ये जितने काम कर रहे हैं सब रंगीन ड्रेस पहन रहे हैं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि नौकर कौन है भाई कौन है। तो मैं तो समझिए नौकर लोग हैं। तो बस दादी के अंदर जो चला चिंतन आ गई क्लास के बीच में, सबको बुलाया और बोलती है पांडव हमारे भाई तुम्हारे पास जितनी रंगीन ड्रेस है सब वापस करो, रिटर्न करो। और दीदी कहे, दीदी और दादी का थोड़ा सा यहां पर विचारों में अंतर, दीदी कहे दादी अगर इनको हम सफेद ड्रेस पहनाएंगे तो भंडारे वाले कितना खराब करेंगे, कितना साबुन चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए धुलाई की, और कारपेंटरी में काम करने वाले अगर रंग सफेद ड्रेस पहन के कारपेंटरी करेंगे तो उनके कपड़े कितने चाहिए। दादी कहती कितना भी देना पड़े, 5 ड्रेस 6 ड्रेस 8 ड्रेस कितनी खराब करेंगे, दादी देगी लेकिन इनको नौकर के रूप में नहीं देखेगी। वह दीदी दादी ने बस दोनों ने कहा दी दादी जैसा आप कहेंगे। सबके हम लोगों के पास जितने पैंट सूट मिले थे ना सबके पास सब सरेंडर हो गए एक दिन में ही, और बस कुर्ता पजामा मिला, ड्रेस मिल गई दोनों की तरफ से। उस दिन से लेकर के आज तक मैं समझता हूँ 35 साल चल होने वाले होंगे, 35-36 साल रंगीन ड्रेस नहीं पहनी। हमारी दीदी और दादी ने यज्ञ के अंदर जो पालना की, जो स्थापना में यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया, एक दादी नहीं लेकिन, अब चंद्रमय दादी की बात सुना दूं, पंजाब वाले बैठे हैं, लास्ट दिन की बात सुनाता हूँ, बीच की पालना तो अलग थी दादी की। लास्ट दिन जिस दिन यहाँ से बेंगलोर जा रही थी, गेट पर गाड़ी खड़ी किया, और मेरा ऑफिस जो है लिटरेचर के ऊपर है पांडव भवन में, गेट पर गाड़ी खड़ी करके कहती है राजू को बुलाओ, चंद्रमय दादी। तो मैं ऊपर से आया दौड़ करके, मैं दादी क्या है आप तो अभी जा रहे हैं। बोला मैं बेंगलोर जा रही हूँ और मुझे रास्ते के लिए वहां के लिए तुम इतनी मुरलियां ले आओ, पढ़ाई का जितना आपके पास अच्छा अच्छा खजाना है वो सब ले आओ। दादी ने कम से कम 15 मिनट गेट पर गाड़ी खड़ी रखी, और जब तक मैं ऊपर गया कुछ फोटो स्टेट किया तैयार किया लाया और ले करके गई, और वहां से फिर वापस तो समझते हो कैसे आई, चली गई बाबा के पास अचानक बेंगलोर में। तो दादी चंद्रमणि को भी मैंने देखा, पढ़ाई से बाबा से जिगरी प्यार, एक बाबा दूसरा न कोई। तो इन दादियों ने जो यज्ञ की इतनी नींव मजबूत की, एक एक पिल्लर बनी, वंडरफुल दादियां थी, एक होके रही, एक दूसरे को सम्मान दिया, और एक दूसरे को जो दादी ने कहा जो दीदी ने कहा एक भी दादी ने कभी कट नहीं किया कोई बात, कोई ने नहीं कहा दादी ये कैसे हो सकता है, दादी कह रही है। विश्व रतन दादा थे ना, दूसरी बात सुना दो, तीनों दादाओं की बात सुना के 10 बजने वाला मैं पूरा करूंगा, पूर्वजों की कहानी बहुत बड़ी है। तो दादा विश्व रतन क्लास के समय कभी कभी पहरा होता था, हम सबका पहरा लगता था, उधर मुरली क्लास चलता था उधर पहरा होता था, और अगर किसी दिन हम लोग पहरे पर ना आए तो दादा हमको एक बात कहता था, देखो दादी ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है और अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो सारा बोझ तुम्हारे पर चढ़ेगा, और अगर कोई चीज तुम्हारी मिस हो रही है, मान लो क्लास चल रहा है, योग चल रहा है, बाबा आए हुए हैं और तुम्हारी पहरे की ड्यूटी है, तो ऐसे नहीं तुम पहरा छोड़ करके बाबा की मुरली सुनने चले जाओ कि श्री मत कहती मुरली सुनो पहले। नहीं, हमारा कुछ भी मिस नहीं होता। अगर हमने दादियों की बड़ों की आज्ञा मानी है तो बाबा को जो कुछ देना होगा अपने आप दे देगा, हम मिस नहीं करेंगे। जो सेवा मिली है उसको एक्यूरेट करो, वफादारी से करो, भले आपकी मुरली में सो, आपकी पिकनिक में सो, आपका क्लास में सो, बाबा आपको उसका रिटर्न करेगा। तो दादा ऐसे आज्ञाकारी, इतने सपूत बाबा के वफादार, जो दादियों ने कहा और दादा ने किया। कभी नहीं कहा दादी मैं रात भर पहरा, दादा को लास्ट तक भी कमरा नहीं था, अपना कमरा पर्सनल लास्ट में मिला जब हमारे पास बना अपने हवाई महल के ऊपर कमरे, तब दादा को कमरा अलाट हुआ। पहले यशो दादी का ऑफिस, बाबा का जो ऑफिस था उसी चारपाई पर सोए, और रात को बाथरूम के लिए गेट पर बाथरूम था वहां जाते थे। कोई भी उनके पास फैसिलिटी नहीं। चंद्रहास दादा का अपना कमरा नहीं था, जहां रिकॉर्डिंग करते थे वहीं पर वो सोते थे। इन दादाओं ने बहुत त्याग करके, जबकि दादा चंद्रहास हमारे यज्ञ के अंदर जितना कंस्ट्रक्शन हुआ, जितने मकान बने उनके, वही इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं लेकिन पूरे ही मकान उन्होंने बनवाए। और दादा आनंद किशोर जो थे वो बहुत अच्छे इंग्लिश के मास्टर थे, जो पत्र लिख दें सरकार को उनके पत्र को कोई कट नहीं कर सकता था। बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छा उनका शब्दों का मेल, वो इंग्लिश में मास्टरी थी, और पूरा ऑफिस दादा संभालते थे आनंद सो दादा। और जब पहले पहले हमारी संस्था की दादी प्रकाशमणि जी, दादी रतन मोहिनी, आनंद सो दादा तीनों ही विदेश सेवा पर एक साल के लिए गए 52 में, और वहां पर एक साल हांगकांग जापान उधर सेवा करके, और वहां से लाए क्या मालूम क्या लाए थे, पूरा स्टीमर चित्र बनवा करके लाए, कुछ नहीं लाए पैसा, और चित्रों का स्टीमर भर करके लाए, झाड़ त्रिमूर्ति गोला यही मुख्य हमारे चित्र थे, वो सारे चित्र भर करके लाए और फिर भारत के अंदर सेवाएं प्रारंभ की। तो इन दादाओं ने, हमारी दादियों ने त्याग तपस्या और सेवा के बल से, एक बाबा दूसरा न कोई, इस निश्चय के आधार से ही हमारे पूर्वज हैं। और इन पूर्वजों की कहानी तो, और ड्रामानुसार मुझे हर दादी के समीप आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं मुरली पढ़ता लिखता टाइप करता इनसे पूछता, तो दादियों के साथ रहने का, खेलने का, हंसने का, खाने पीने का सब प्रकार का सौभाग्य मिला। इसलिए पूर्वज आत्माओं के आधार से यज्ञ आज इतना आगे बढ़ा है, और आज इसका जो फाउंडेशन इतना मजबूत है उसके आधार से कोई भी इसको हिला नहीं सकता। ओम शांति।
ओम शांति।